ओम शांति। मम्मा के देहांत के बाद ब्रह्मा बाबा ने मनमोहिनी दीदी, जिसको हम बड़ी दीदी कहते हैं, उनको यज्ञ में अपने मददगार के रूप में बुलाया। तो दीदी जी ने जो मम्मा का कारोबार था अपने हाथ में ले लिया। दीदी जी योगिन थे और पढ़ाई में भी नंबर वन थे। उसका लौकिक नाम गोपी था और सचमुच वो बाप के प्यार में लीन रहती गोपिका थी। दीदी जी वैसे दिल्ली की इंचार्ज थी। दीदी दादी ने अपना ये डिवाइड किया था। दीदी जी नॉर्थ में देखती थी और दादी जी साउथ में देखती थी। तो दादी जी 64 में बंबई आए। तो दीदी जी को योग का बहुत शौक था और उन दिनों में ये नियम बनाया था कि 4 से 8 सब साइलेंस में रहे, किसी से बातचीत ना करे, मुरली के बाद बातचीत करे। तो क्या था, एक बारी मीरा बहन और हेमलता बहन दोनों मुरली के पहले दीदी के कमरे में गए, कुछ कारोबार था। दीदी ने पूछा अर्जेंट है, उन्होंने कहा नहीं, तो कहा मुरली के बाद आना, तो भेज दिया। मैं एक बार गई कारोबार के लिए, तो मैं नॉर्मल आवाज में बात कर रही थी। दीदी कहे धीरे से बोलो, अर्थात मुझे सुना, जवाब दिया, पर साइलेंस में या बहुत धीरे आवाज से। मुरली क्लास में दीदी की सीट फिक्स होती थी। दादी भी मुरली सुनाती थी पर दीदी फर्स्ट बैठती थी और सफेद लाइट होने के पहले पहुंच जाती थी और पॉइंट्स लिखती थी। उन दिनों में मुरली की साथ प्रश्न उत्तर नहीं होते थे, बाद में शुरू हुए। तो दीदी प्रश्न उत्तर के रूप में पॉइंट्स लिखती थी और मुरली के बाद विदेशी दीदी से दृष्टि लेने जाते थे। दीदी सबको दृष्टि देती थी और मुरली के प्रश्न पूछती थी, आज बाबा ने मुरली में इसके बारे में क्या कहा। तो मुरली का प्रश्न पूछती थी और दीदी जब बाबा के साथ रहती थी उसने क्या करती थी, एक दिन मिठाई जो बनाई थी ना उसकी चक्कियां एक समान नहीं थी, कोई बड़ी कोई छोटी थी, तो बाबा ने बुलाया दीदी को, ऐसा कैसा, सब समान होनी चाहिए नहीं तो किसी को वेस्ट थॉट होगा कि इसको बड़ी चक्की मिली मुझे छोटी मिली। और जो बाबा से मिलने आते थे पहले दीदी से बात करते थे, तो दीदी जवाब मन में सोचती थी और फिर बाबा के पास ले जाकर उनका सवाल का या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेती थी, तो चेक करती थी कि मेरी बुद्धि कहाँ तक ठीक है, बाबा के साथ कनेक्शन में है। और फिर जब देखा कि उसका जवाब और बाबा का जवाब एक ही है, तब समझा कि मेरी बुद्धि क्लियर है। तो दादी जी के साथ तो हमारा 64 से कनेक्शन था, क्योंकि दादी बम्बई में वाटरलू मेंशन में आई, उस समय रमेश भाई ने चित्र की प्रदर्शनी बनाई थी, उसको गाइडेंस देने के लिए बाबा ने दादी जी को पटना से बम्बई बुलाया। तो पटना में जालन बाबू करके था जिसके पास दादी को रहाया, पर वो जैसे जेल में थी, अर्थात वो जालन बाबू के जो उस लेवल के पैसे वाले लोग हैं वही उनको ही आने देता था, चाहे कोर्स करना है मुरली सुनना है। तो 64 में दादी फ्री हुई बंधन मुक्त, और दादी ने बम्बई को संभाला जब तक अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब तक बम्बई में रही। यज्ञ में भी दादी को मुन्नी माँ कहते थे, 3/4 मम्मा, मतलब जैसे कि माता है मम्मा। और जब 69 में बाबा अव्यक्त हुआ, बाबा ने दीदी और दादी दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स नियुक्त किया। पहले तो सभी ब्राह्मण कंपेयर करते थे कि जब ब्रह्मा बाबा थे हमको ये भेजते थे, ऐसे चलाते थे, मम्मा थी हमको ऐसे देती थी, ऐसा करती थी आदि आदि। एक साल कंपेयर किया, परंतु एक साल के बाद सभी कहने लगे हमको दीदी दादी से मम्मा बाबा की भाषा आती है। तो यज्ञ में 14 साल रहकर इन्होंने अच्छी ही ज्ञान योग का फाउंडेशन तैयार किया था और सभी दादियां मिलजुल करके काम करते थे और दीदी दादी कहते थे हम शरीर दो है आत्मा एक है, साथ में सोचते थे। कई बार दिल्ली वाले दादी प्रकाशवाणी से कुछ पूछते थे तो दादी फौरन जवाब नहीं देती थी, कहते थे कल आना मैं सोचूंगी। फिर दीदी के साथ कंसल्ट करती थी कि क्या करना है, उसको क्या जवाब देना है, क्योंकि लोग क्या करते थे, क्लेवर है ब्राह्मण भी, 3 जन के पास जाएंगे, राय लेंगे, निर्भर भाई के पास जाएंगे, प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, सबके पास जाएंगे, फिर जो राय उनको पसंद आएंगे कहेंगे मुझे निर्भर भाई ने ये राय दी है। तो इसलिए दीदी दादी आपस में राय सलाह करके एक ही जवाब उनको देती थी। तो दादी जी को मधुबनवासी बहुत प्यार करते थे। दीदी ने तो 83 में शरीर छोड़ा, फिर दादी जानकी आई। दादी जानकी का गाइड कहो, मेंटर कहो, बड़ी दीदी थी। उसको कुछ भी पूछना होता था दीदी से पूछती थी। कई बार मम्मा बाबा कुछ उनको आज्ञा देते थे और दादी को पसंद नहीं आती थी या सोचती थी मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो दीदी के पास जाती थी और दीदी राय देती थी कि बाबा ने जो कहा है तुम्हारे अंदर जरूर वो शक्ति है, इसलिए कहा है, ऐसे नहीं समझो कि मैं कैसे साधु संत के सामने भाषण कर सकूंगी, तुम्हारे में ताकत है। तो ऐसे करके दीदी उनको, जात की दादी को भी एनकरेज करते थे। तो दादी जी की मुरली बहुत रमणीक होते थे और मधुबनवासी कभी मिस नहीं करते थे, अपना काम समेट करके सब मुरली में पहुंच जाते थे और अंत में तो डबल विदेशी जो भी थे ना, वो दादी जी की मुरली ऐसे याद करते हैं, दादी जी फूल का गुलदस्ता ऐसे ऐसे करते आएंगी, कहीं आज मुझे बाबा ने क्या कहा बताऊं, क्योंकि मुरली के पहले बाबा के कमरे में जाती थी और बाबा कुछ न कुछ प्रेरणा देते थे तो दादी आकर सुनाती थी। विदेश जाती थी तो भी, कहाँ भी जाती थी, पहले बाबा के कमरे में जाकर आती थी और बाबा ने क्या संदेश सुनाया वो सुनाती थी। मतलब प्रेरणा बाबा की खींचती थी बाबा के कमरे में जाकर। और दादी पांडव भवन के आंगन में कभी कभी बैडमिंटन खेलती थी, कभी कभी मुरली के टाइम दादी को प्रेरणा आई, आज ठंडी है, बोली दादी मुरली के बाद इन्हों को गरम गरम हलवा खिलाओ। तो बोली दादी सिगड़ी और हलवे की तैयारी करके आकर गरम गरम हलवा बनाती थी और जो भी क्लास करके आते थे उन्हों को वो टोली मिलते थे। कभी गरम गरम पकौड़ा बनवाया, कभी गरम गरम चाय बनवाई, ऐसे दादी को प्रेरणा आती थी। तो मुरली में कहती थी, मुन्नी आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाए और एकाएक जैसे पिकनिक बनाती थी पीस पार्क में ब्रेकफास्ट। एक बार पीस पार्क में मुरली भी सुनाई थी, मुझे याद है तब पीस पार्क इतना डेवलप नहीं हुआ था, पर हम सभी थल्ले पर बैठे थे, दादी ने मुरली सुनाई। और पीस पार्क में खेल करते थे तो दादी भी खेल में भाग लेती थी, क्रिकेट खेलती थी। और वो जो गेम्स होती है ना मटका फोड़ने के, आंखों पर पट्टी बांध कर जाकर मटका फोड़ने के, उस गेम में भी पार्ट लिया। तो जब दादी ने शरीर छोड़ा, जानकी दादी इंचार्ज बनी, तो मधुबनवासी कहते हैं हम अपनी माँ को मिस करते हैं, जानकी दादी टीचर बहुत अच्छी पर हम माँ को मिस करते हैं। तो दादी का नाम था रामा और दादी के अव्यक्त बाप दादा ने नाम दिया कुमार का और अव्यक्त बाप दादा ने प्रकाशमणि नाम दिया। दादी में एक बल एक भरोसा था, उनकी बुद्धि कहां भी अटकी नहीं और उन द्वारा बहुत कुमार निकले। दादी दुआओं के भंडारे की मालिक थी, सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक रही। दादी जी की लौकिक माँ ज्ञान में थी और मौसी भी, दो मौसी भी ज्ञान में थी। पर कर्मों के बंधन से मुक्त थे, सदा निर्लिप्त और न्यारी रहती थी। दादी छाती ठोक कर कहती थी, मैंने कभी झूठ बोला नहीं, मैं सदा सच्चा बोली। मान अपमान में दादी समान रहती थी। मुझे याद है एक बार टीचर्स मीटिंग में, टीचर्स उन दिनों में तो टीचर्स की मीटिंग में मीटिंग मेडिटेशन हॉल में चलती थी, 100 से कम टीचर्स होंगे। परंतु उस मीटिंग में हमारे एक सीनियर भाई ने दादी का अपमान किया कि आप क्या जानो, पढ़ी लिखी नहीं हो, दुनिया में नहीं हो, दुनियादारी को आप क्या जाने। दादी शांत रहे और जरा भी मन में उनके लिए द्वेष भाव नहीं आया और उनको रिस्पेक्ट देकर चलाती रही। गंभीर थी और नम्रता का गुण था। सदा मेरेपन से दूर और मैं समर्पित पूरी रीति से, स्वमान में रहने वाली थी और सबको सम्मान देती थी। हमको भी, मुझे याद है कभी तू तू नहीं कहा, आप। और जब मेरे से बात करती थी डॉक्टर कहके, डॉक्टर स्वभाव संस्कार मिलाने का उनके में बहुत नंबर वन संस्कार। सभी दादियों को दादी दादी कहके बुलाते थे, रतन मोहिनी दादी, मनोहर दादी, जो भी दादियां थी सबको दादी दादी। पिताव्रता थी, एक व्रता थे, यज्ञ की इतनी जिम्मेवारी थी, पर अपने को निमित समझकर हल्के रहते थे। उसको नींद आने में टाइम नहीं लगता था, रात को मुरली जरूर पढ़कर सोते थे, क्योंकि मोहिनी बहन उनके कमरे में ही रहती थी। कभी कभी मोहिनी बहन जल्दी आ जाती थी या उन्होंने मुरली नहीं पढ़ी होती थी तो टॉर्च लेकर भी मुरली पढ़कर, और सवेरे हम लोग मुरली के पहले दादी के पास जाते थे तो दादी मुरली का एसेंस हम लोगों को सुनाती थी। तो अपने को निमित्त समझते थे, हम कहते थे दादी आप इतनी हल्की और हमेशा हर्षित मुख कैसे रह सकती है। तो दादी ने कहा यज्ञ का जिम्मेवार बाबा है, मैं तो निमित्त हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। हर संकल्प श्वास और समय को सफल कर रही थी और करा रही थी। वो ठंडी के दिनों में विशेष मुरली के बाद आंगन में ही धूप में बैठती थी और जो भी आते जाते थे दादी को ओम शांति करते थे। और देश विदेश दोनों को देखा उन्होंने। क्या होता था कि दादी जानकी तो 74 में लंदन आई और जब तक दादी विदेश की दोर हाथ में ले तब तक दादी प्रकाशमणि विदेश को भी देखती थी। तो हमारा कनेक्शन दादी प्रकाशमणि से बहुत था शुरू से ही, बंबई के कारण फिर विदेश के कारण। और क्या होता था दादी जानकी विदेश की इंचार्ज बनी। पीछे क्या हुआ कि हम लोगों को जिसको भी कुछ भी बात करनी होती थी, प्रॉब्लम होते थे, सब दादी के फायर में लाइन लगाते थे और दादी एक एक से सुनकर उनको राय देती थी। तो कई बार हमें लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ता था और सवाल थोड़ा छोटा होता था तो मैं क्या करती थी, दादी प्रकाशमणि से टाइम लेती थी। ओके, वो उसी समय बुला लेती थी, 2 मिनट में हमारा काम हो जाता था। और मैं टूर करती थी तो मैं पहले ऑस्ट्रेलिया से 75 में हमने सेंटर शुरू किया और न्यूजीलैंड का चक्कर लगाने गई, हमारा वीसा पूरा हुआ। अब न्यूजीलैंड और फिजी में हमने कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई सेंटर नहीं था, कोई लौकिक अलौकिक कोई नहीं थे। हमने टूर किया और न्यूजीलैंड में मैं जिनके घर में रही थी वो भाई तो ज्ञान में आता था पर माता नहीं आती थी, तो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा। तो मैंने दादी को पत्र लिखा तो दादी कहे तुम तो शेरनी हो, देखो हाथी है वो झुंड में घूमता है, शेरनी अकेली घूमती है, तुम शेरनी हो। इससे क्या होता है, वो दादी के उस पत्र के बाद मुझे थोड़ी आदत मिली। तो हम जब विदेश जाते थे 71 में 5 जने विदेश गए, मैं रोजी बहन, शील दादी, रमेश भाई और जगदीश भाई। तो हम पांचों को बहुत अच्छी रीति विदाई दी। पहले तो बाबा ने हम पांच और दादी जी के सामने बाबा के कमरे में मुरली चलाए और हम लोगों को शिक्षा दी कि यहां से जाने के पहले ही वहां आप योग का दान दो और जब भी सेवा पर जाओ पहले योग में बैठ के फिर जाना। तो और फिर पांचों को प्रकाश स्तंभ वहां अपने पांडव भवन में कौन सा है प्रकाश संत बाबा का, वहां पांचों को खड़ा करके दादियों ने किसी ने फल दिया, किसी ने तिलक दिया, किसी ने छाटा गुलाब जल। तो वहाँ उस समय गीत बजाया, भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है। तो ऐसी अच्छी फेयरवेल दी और जब आई वहाँ से विदेश से पहली बारी, तभी भी दादी ने अच्छी रीति से मुलाकात की। तो इस कारण क्या हुआ कि विदेश जाने में हमको वो नहीं हुआ, बाधा नहीं आई, क्योंकि विदेश की सेवा शुरू करना सहज तो नहीं था, परंतु दादी का प्यार, उमंग, उत्साह हमको सेवा में मदद किया। और दोबारा जब दादी ने पूछा कि लंदन जाएंगी, मैंने कहा भले जाएंगे, दादी को ना नहीं कहा। और दादी हमेशा हल्की रहती थी, उसकी दिव्य बुद्धि थी और वरदानी मूरत थी, बड़ी दिल, विशाल दिल और रहम दिल थे। तो दादी ने वही सिस्टम चालू रखी जो ब्रह्मा बाबा ने रखी थी। तो दीदी दादी वही सिस्टम से चलते रहे। बुद्धि बेहद की और भावना भी बेहद की। उन्होंने किसी के भी अवगुण को चित्त पर नहीं रखा, सदा संतुष्ट मणिबन, सबको संतुष्ट करने की उनकी भावना थी। योग युक्त दिव्यता संपन्न हर्षित चेहरा था। अतीन्द्रिय सुख के खजाने से संपन्न थे। लक्ष्य के समान सदा लक्षण धारण करने में नंबर वन थे। तो दादी जी के संग हमने ज्यादा समय बिताया और अगस्त मास में विशेष दादी की याद में अभी भी मुन्नी बहन सबको गिफ्ट राखी की और दादी दे के देंगे और अगस्त में लेबरर को भी बर्तन या कुछ देती है, सबको कुछ न कुछ सेवाधारी समर्पित सबको अलग अलग दिन बुलाकर प्रोग्राम रखती है। हॉस्पिटल वालों का तो कल ही है, 13 तारीख कल है ना, कल ही हॉस्पिटल वालों को गिफ्ट वगैरह देंगी, राखी बांधेंगी, तो राखी हमारी कल से शुरू हो जाएंगी मधुबन की। और बीच बीच में चलती रहेंगे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे।